दिन भर 11 सितंबर दिन बुधवार, मैं हूं फैसल मोहम्मद अली। विदेश नीति पर बढ़ते मतभेदों के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने सुरक्षा सलाहकार बोल्टन को किया बाहर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने चरमपंथियों की निशानदेही का किया दावा।
हमने सब मिलकर आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी मूवमेंट हो रही है, सबको हम डे टू डे बेसिस पे चेज कर रहे हैं। ऑपरेशन हमारे इस वक्त बिल्कुल तेजी से चल रहे हैं।
पाकिस्तान में मुसलमान कर रहे हैं गुरुद्वारों की देखरेख।
ये सिखों की जो है इबादत गाह है, इसका ख्याल रखें, क्योंकि जैसे हम अपनी मस्जिदों का ख्याल रखते हैं उसका भी रखना चाहिए।
दुनिया जहान में चर्चा जिम्बाब्वे के पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे की।
We can't learn the rule of law from the British because they never।
सब आगे, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन को पद से हटा दिया है। पिछले 3 सालों में ये तीसरा मौका है जब किसी को इस पद से हटाया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ट्वीट करके कहा कि उन्होंने बोल्टन को बताया कि अब उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बोल्टन के कई फैसलों से उन्हें गहरी आपत्ति थी, मगर बोल्टन का कहना है कि उन्होंने खुद अपने पद से इस्तीफा दिया है। भारत ने कहा है कि वो अगले महीने अरुणाचल प्रदेश के चीन से सटे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सैन्य अभ्यास करेगा। इस अभ्यास में हाल ही में गठित माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स के लगभग 5,000 सैनिक हिस्सा लेंगे। अरुणाचल प्रदेश को चीन दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है और अक्सर इस राज्य में भारतीय नेताओं के दौरे का विरोध करता है। 2 साल पहले साल 2017 में भूटान के पास डोकलाम क्षेत्र में दोनों देशों के सैनिकों के बीच गतिरोध बना रहा था। भारत ने उस समय चीनी सैनिकों पर घुसपैठ का आरोप लगाया था। स्कॉटलैंड की एक अदालत ने फैसला सुनाया है कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का ब्रिटेन की संसद को भंग करना और इस मामले में महारानी को सलाह देना गैरकानूनी था। जजों ने एक मत से संसद को भंग करने के पीछे की जॉनसन की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद और पूर्व अटॉर्नी जनरल डोमिनिक ग्रीव ने कहा कि इस फैसले के परिणाम गंभीर हो सकते हैं।
It's absolutely central to our constitution that the relationship between the Prime Minister and the Queen is one of the utmost confidentiality and the utmost good faith.
ये हमारे संविधान के केंद्र में है कि प्रधानमंत्री और महारानी के रिश्ते में पूरा भरोसा होना चाहिए। तो अगर सरकार ने महारानी को संसद को निलंबित करने के कारणों को लेकर गुमराह किया है तो ये बहुत गंभीर बात है। मेरे ख्याल से अब प्रधानमंत्री जॉनसन को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये थे कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद डोमिनिक ग्रीव के शब्द। इस बीच ब्रिटेन की विपक्षी पार्टियां फिर से संसद बहाल करने की मांग कर रही हैं, मगर सरकार के सूत्रों का कहना है कि अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आने तक ऐसा नहीं किया जा सकता। अरब देशों ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के उस बयान की निंदा की है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर वो फिर जीतते हैं तो कब्जे वाले वेस्ट बैंक में मौजूद जॉर्डन घाटी पर इसराइली संप्रभुता घोषित कर देंगे। सऊदी अरब ने इसे यूएन चार्टर का खुला उल्लंघन बताया है। अरब लीग और जॉर्डन ने इसे आक्रामकता और उकसावे वाला कदम बताया है। फलस्तीनी प्राधिकरण में मंत्री रहे गजन खातिब ने बीबीसी से कहा कि नेतन्याहू का ये कदम फलस्तीनियों से भेदभाव बढ़ाएगा।
It will end in practical terms the possibilities of two-state solution and since the two-state
इससे दो राष्ट्रों वाले हल की व्यावहारिक संभावनाओं का अंत हो जाएगा। चूंकि दो राष्ट्रों का सिद्धांत ही एकमात्र हल है, इसलिए नेतन्याहू के प्रस्तावित कदम से इसराइली और फलस्तीनियों के शांति से रहने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। इससे हम एक देश वाली स्थिति की ओर बढ़ेंगे जहां फलस्तीनी और इसराइलियों पर एक ही देश में अलग अलग कानून लागू होंगे। ये थे फलस्तीनी प्राधिकरण में मंत्री रहे गजन खातिब के शब्द। ब्रिटानी सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है कि उनके यहां पढ़ रहे विदेशी छात्रों को उनका कोर्स खत्म होने के बाद 2 साल तक देश में रहने दिया जाएगा। इससे पहले 2012 में व्यवस्था की गई थी कि छात्रों को 4 महीने के अंदर ही देश छोड़ना होता था। ये कदम ब्रिटेन में आप्रवासन को कम करने के मकसद से उठाया गया था। हायर एजुकेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के निदेशक निक हिलमैन ने कहा कि ये अच्छी खबर है।
10-15 years ago when the rules were laxer, that did happen.
10-15 साल पहले कानून नरम थे, मगर तब से लेकर अब तक कई सारे प्रावधान और नियम सख्त कर दिए गए हैं। ये ताज़ा बदलाव उन प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के लिए है जिन पर गृह मंत्रालय को भरोसा है। तो 10-15 साल पहले क्या हुआ उसका आज के दौर से और आज की सरकार से तुलना करना ठीक नहीं है। ये थे ब्रिटेन के हायर एजुकेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के निदेशक निक हिलमैन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। एक नए सर्वे के मुताबिक 3/4 अमरीकी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने कहा है कि अमरीका और चीन के बीच छिड़े ट्रेड वॉर से उन्हें नुकसान पहुंच रहा है। हाल ही में अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा था कि चीनी सामान के आयात पर खरबों डॉलर का आयात शुल्क लगाने से चीन मुश्किल में है, जबकि अमरीका को फायदा पहुंच रहा है। नॉर्वे की शरणार्थी परिषद का कहना है कि सोमालिया में जारी संघर्ष और सूखे के कारण लगभग 2.5 लाख लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। इनमें से अधिकतर लोग सूखे के कारण भोजन और पानी की तलाश में शहरों की ओर निकले हैं। एजेंसी का कहना है कि 1,30,000 से अधिक लोगों को इस साल उनके कैंपों से हटाया गया है और उनमें से अधिकतर लोग कई सालों से अस्थायी रिहायशों में रह रहे थे। फिलीपींस के विदेश मंत्री का कहना है कि उनके देश में ड्रग्स के खिलाफ छेड़े गए अभियान में कथित हिंसा को लेकर संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं को जांच की इजाजत नहीं दी जाएगी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी रेडियो की शाम की सभा आप सुन रहे हैं फैसल मोहम्मद अली से, नमस्कार। पूरे घंटे भर ये सभा जारी रहेगी, यानी शाम के 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। आप इस सभा को सुन सकते हैं रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी। सबसे पहले बात अमेरिका की। विदेश नीति को लेकर बढ़ते मतभेदों के बीच जो कहा जा रहा है तालिबान से हाल तक जारी वार्ता को लेकर अपनी चरम पर जा पहुंचा था, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन को मुअत्तल कर दिया है। हालांकि बोल्टन का कहना है कि उन्होंने खुद से इस्तीफा दिया। ट्रंप और बोल्टन के बीच उत्तर कोरिया और वेनेजुएला जैसे मुद्दों पर भी मतभेद थे। अपने 3 सालों के शासनकाल में राष्ट्रपति ट्रंप ने अब तक 3 राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों को बाहर का रास्ता दिखाया है। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी।
अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ट्वीट करके एक अहम फैसले का ऐलान किया। ट्रंप ने मंगलवार को ट्वीट में लिखा कि उन्होंने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन को बताया कि अब उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बोल्टन के कई फैसलों से उन्हें गहरी आपत्ति थी। ट्रंप ने ट्वीट में कहा, मैंने जॉन से इस्तीफा मांगा और आज सुबह मुझे वो सौंप दिया गया। मगर उसके बाद जॉन बोल्टन ने भी ट्वीट करके दावा किया कि उन्हें हटाया नहीं गया बल्कि उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है। व्हाइट हाउस के डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी होगन गिडली ने पत्रकारों से कहा कि जॉन बोल्टन की प्राथमिकताएं और नीतियां राष्ट्रपति ट्रंप से मेल नहीं खा रही थी।
John Bolton's priorities and policies just don't line up with the president's.
व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने कहा कि हर राष्ट्रपति को अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए उस पद पर अपनी मर्जी की नियुक्ति का हक है और बोल्टन के उस पद पर रहते हुए ऐसा नहीं हो पा रहा था, इसलिए बोल्टन को पद से हटा दिया गया। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी इस मामले में ट्रंप की हां में हां मिलाई।
When the president makes a decision like this, he's well within his rights to do so.
जॉन बोल्टन को अप्रैल 2018 में नियुक्त किया गया था। वो माइकल फ्लिन और एचआर मैकमास्टर के बाद ट्रंप के तीसरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। ट्रंप प्रशासन से बोल्टन की विदाई ऐसे समय में हुई है कि जब ईरान के साथ अमरीका का तनाव बढ़ता नजर आ रहा है, उत्तर कोरिया अपने विभिन्न हथियार विकसित कर रहा है, रूस के साथ परमाणु हथियारों को विकसित करने की दौड़ भी जारी लगती है, अमरीका और चीन के बीच व्यापार युद्ध की स्थिति जारी है और अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों की वापसी की ट्रंप की योजना खटाई में पड़ती लग रही है। ऐसी खबरें आती रही हैं कि ट्रंप और बोल्टन के बीच अमरीका की लगभग हर बड़ी विदेश नीति को लेकर मतभेद रहे हैं, खासकर उत्तर कोरिया, ईरान और वेनेजुएला के मामलों में। खबरें हैं कि ट्रंप जिस बात पर जॉन बोल्टन से सबसे ज्यादा नाराज हुए वो था तालिबान के साथ वार्ता का मामला। जॉन बोल्टन अमरीकी विदेश नीति में आक्रामक रुख रखने वाले माने जाते थे, खासकर ईरान के खिलाफ ट्रंप की सख्त नीति के वही मुख्य कर्ता धरता थे। मगर उत्तर कोरिया, रूस और अफगानिस्तान के मामलों में सख्ती बरतने के रुख के चलते ट्रंप से उनकी कई बार नोकझोंक की खबरें भी आती रही थीं। जॉन बोल्टन ने तालिबान के साथ शांति वार्ता पर भी आपत्ति की थी जिसे ट्रंप ने रद्द कर दिया। कहा जाता है कि बोल्टन मानते थे कि एक चरमपंथी गुट के नेताओं को कैम्प डेविड में बुलाने से गलत प्रथा चल पड़ेगी। इस साल फरवरी में वियतनाम में ट्रंप की उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ बैठक रद्द होने के लिए भी बोल्टन को जिम्मेदार माना जाता है क्योंकि उन्होंने ऐसी शर्तें रखवा दी थीं जिसे किम ने मानने से इनकार कर दिया था। इसी साल ट्रंप वेनेजुएला में भी अमरीकी नीति के विफल रहने से खफा हैं और वो ये मानते हैं कि बोल्टन ने उन्हें इस बारे में गलत सलाह दी। बोल्टन की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद से विदाई को लेकर कई डेमोक्रेट नेता कह रहे हैं कि ये ट्रंप प्रशासन में खराब हालात का एक और नमूना है। वहीं अधिकतर रिपब्लिकन मानते हैं कि ट्रंप को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुनने का हक है। एक रिपब्लिकन सेनेटर रैंड पॉल ने बोल्टन के पद से हटाए जाने पर इत्मीनान जताया।
I think Bolton's view that regime change is the answer.
सेनेटर रैंड पॉल कह रहे थे कि मैं समझता हूं कि बोल्टन का ये नजरिया कि अमरीकी विदेश नीति में दुनिया भर में विभिन्न देशों में सत्ता पलट के जरिए अमरीका की तरह का जनतंत्र लागू किया जाए, ये बहुत खतरनाक और नासमझी है और इससे अमरीका कई जंगों में फंस सकता है। कहा जा रहा है कि ट्रंप अमरीका के पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने पहले ही कार्यकाल में तीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों को बदला। सन 2017 में सत्ता संभालने के पहले साल में ही ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन को रूस के साथ सांठगांठ की जांच के दौरान झूठ बोलने के लिए पद छोड़ना पड़ा था। वहीं 2018 में एचआर मैकमास्टर को भी अपना पद गंवाना पड़ा था। प्रतिरक्षा मंत्री जिम मैटिस को भी सीरिया के मामले में ट्रंप से अलग रुख रखने के कारण पद छोड़ना पड़ा था। इसके अलावा रेक्स टिलरसन को भी ट्रंप ने विदेश मंत्री के पद से एक ट्वीट के जरिए ही हटा दिया था। इसके अलावा राष्ट्रीय गुप्तचर विभाग के निदेशक डैन कोट्स को भी ट्रंप की नीतियों पर अलग रुख रखने के कारण पद छोड़ना पड़ा था। खबरें हैं कि अब बोल्टन की जगह पर नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को तैनात करने के लिए ट्रंप ने करीब 10 लोगों की सूची बनाई है। ट्रंप ये ट्वीट कर चुके हैं कि जल्द ही वो नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तैनात कर देंगे। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अगर वो फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो जोर्डन घाटी को इसराइल का हिस्सा बना लेंगे, यानी पश्चिमी तट का एक बड़ा हिस्सा इसराइल का भाग बन जाएगा, एक वो इलाका जिसको लेकर फलस्तीनियों का सपना है कि वो एक दिन फिर से उनका होगा। पश्चिमी तट पर इसराइलियों की बस्तियां पहले से ही विवादों में रही हैं। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुने सृष्टि श्रीवास्तव से।
अरब देशों ने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की वेस्ट बैंक के एक तिहाई हिस्से पर कब्जा करने की योजना की निंदा की है। मंगलवार को नेतन्याहू ने कहा था कि अगर वो अगले सप्ताह होने वाले चुनाव के बाद सत्ता में आते हैं तो जॉर्डन घाटी और नॉर्थ डेड सी पर इसराइल की संप्रभुता लागू करेंगे। जॉर्डन और सऊदी अरब के नेताओं ने उनकी इस घोषणा की तीखी आलोचना की है। जहां फलस्तीनियों ने इस कदम को अवैध बताया है, वहीं संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि ये कदम नई शांति वार्ता की हर संभावना को नष्ट कर देगा। अरब लीग ने नेतन्याहू की योजना को अतिक्रमण करार दिया है, जबकि जॉर्डन ने इसे तनाव को बढ़ाने वाला कदम बताया है। मुख्य फलस्तीनी वार्ताकार साइब इराकात ने नेतन्याहू के इस प्रस्ताव को एक युद्ध अपराध बताया है जो शांति की किसी भी संभावना को 100 सालों तक के लिए दफन कर देगा। फलस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण के एक पूर्व मंत्री गस्सान खतीब ने कहा कि नेतन्याहू की योजना फलस्तीनियों को एक नए तरह के रंगभेद का शिकार बना देगी।
It will end in practical terms. The possibilities of two-state solution.
यह व्यवहारिक रूप से दो राज्यों के समाधान की संभावनाओं को खत्म कर देगा, और क्योंकि दो राज्यों का निर्माण ही एकमात्र समाधान है, इसलिए फिलहाल इजरायली और फिलिस्तीनियों के बीच किसी भी शांतिपूर्ण समझौते की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। यह हमें एक राज्य को स्वीकार करने की मजबूरी की ओर ले जाएगा, और वो राज्य नस्लभेदी होगा जिसमें एक ही देश में फलस्तीनी और इजरायली लोगों के लिए अलग अलग कानून होंगे।
इजरायल ने 1967 से वेस्ट बैंक पर कब्जा कर रखा है, लेकिन आधिकारिक रूप से उसे इजरायल का हिस्सा नहीं बनाया है, जबकि फलस्तीनी इस पूरे क्षेत्र पर भविष्य में एक स्वतंत्र राज्य का दावा करते हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पूर्व में भी जोर देकर कहा है कि इजरायल सुरक्षा उद्देश्यों से जॉर्डन घाटी में हमेशा अपनी उपस्थिति बनाए रखे। संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस प्रस्ताव का कोई अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रभाव नहीं होगा। इसराइल में होने वाले प्रधानमंत्री के चुनाव से ठीक पहले मौजूदा प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपनी घोषणा में कहा, आज मैं नई सरकार बनने के बाद के अपने इरादे की घोषणा करता हूं, जो जॉर्डन घाटी और उत्तरी डेड सी में इसराइल की संप्रभुता लागू करने की है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें इसराइल के नागरिकों से एक स्पष्ट बहुमत मिला तो ये चुनाव के तुरंत बाद भी किया जा सकता है। उनकी इस घोषणा को उनके राजनीतिक विरोधियों ने चुनावी स्टंट बताकर खारिज कर दिया है।
ये थी सृष्टि श्रीवास्तव। बीबीसी हिंदी रेडियो के संपादक राजेश जोशी ने बात की यरूशलम में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हरिंद्र मिश्रा से और जानना चाहा कि नेतन्याहू के ऐलान का मतलब क्या है।
इजराइल ही किसके कंट्रोल में है, इसराइल के ही नियंत्रण में ये क्षेत्र है और इसराइल का नियंत्रण से बढ़कर के ये उसे एक फॉर्मल जामा पहनाना चाहता है, औपचारिक जामा, कि अब वो उसके कब्जे में है।
अच्छा, ये मुझे बताइए, यहाँ मैं समझना चाहता हूँ, ये पूरा इलाका कितना इलाका है, कितना बड़ा है, और वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनको इजरायली माना जाए, फलस्तीनी माना जाए, क्या माना जाए?
देखिए, तकरीबन 30% जो पश्चिम तट का इलाका है वो इजरायल के नियंत्रण में है। वहाँ पर बहुत सारी घनी बस्तियाँ भी हैं, और जैसे कि पिछले चुनाव के पहले भी नेतन्याहू ने कहा था कि माले अदुमेम और गुश एत्सियोन नाम की जो दो बड़ी घनी बस्तियां हैं उसको वो अपने कब्जे में कर लेंगे। हालांकि इन दोनों बस्तियों में भी रहने वाले तमाम लोग यहूदी हैं, पूरी तरह से इसराइल के नियंत्रण में है, वहां से फलस्तीनियों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कब्जे में लेने की जब वो बात करते हैं तब वो ये कहना चाहते हैं कि औपचारिक तौर पर ये पूरा इलाका जो है अब इसराइल का हो गया है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसके बारे में चाहे जो भी सोचे उसका इजराइल उस पर उसका ख्याल नहीं करेगा और अपने कब्जे में ले लेगा
औपचारिक तौर पर। हाँ, तो अब यहाँ पे ये समझने की बात है हरिंदर जी कि जब यहाँ पर बस्तियां बसाई गई यहूदियों की, उससे पहले ये फलस्तीनियों के इलाके थे जहाँ जबरदस्ती यहूदियों की बस्तियां बसाई गई?
नहीं, दरअसल जब 1993 में ओस्लो अकॉर्ड्स हुए तो उस समझौते के तहत ये कहा गया था कि मतलब ये दो राष्ट्रों के निर्माण के जरिए जो बात हो रही थी समाधान निकालने का इस संघर्ष का, इसराइल फलस्तीन संघर्ष का, तो उसमें गजा और पश्चिम तट ये माना जा रहा था कि ये फलस्तीनियों के नियंत्रण में रहेगा और साथ ही साथ यरूशलम का जो पूर्वी यरूशलम का जो हिस्सा है वो राजधानी होगी फलस्तीनियों का, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से प्रस्ताव था। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। दरअसल अगर वो ओस्लो अकॉर्ड्स पर, उन समझौतों पर पूरी तरह से अमल करें तो ये सारा इलाका जो है वो फलस्तीनियों के हिस्से में जाना चाहिए, लेकिन कोई भी इजरायली नेता जो है वो ऐसा नहीं कर पाएगा जैसी यहाँ की राजनीति है।
यानी ओस्लो का जो समझौता है उसको ये लागू नहीं कर पाएंगे। मेरा सवाल यहाँ पर ये है आपसे हरिंदर मिश्रा कि ये जो इलाका है, आप तो घूमे होंगे वहाँ पे, आप रहते हैं, यहाँ क्या फलस्तीनियों के गांव हैं, फलस्तीनियों के कस्बे हैं, उनमें क्या कैफियत है, वो क्या सोचते हैं इस तरह की घोषणाओं के बारे में?
ये जो इलाका है इसमें फलस्तीनी कस्बे भी बीच में पड़ते हैं, चारों तरफ जो है यहूदी बस्तियां हैं, यहूदी बस्तियों के ठीक करीब वहाँ पर फलस्तीनी भी बस्तियां हैं, और इन कस्बे के जो लोग हैं उनकी शिकायत लगातार ये रहती है कि उनके गांवों को इस तरह से कुछ घेर दिया गया है कि जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, उन्हें आसपास के गांव में भी जाने के लिए काफी घूम कर वहां पहुंचना पड़ता है जिसमें काफी वक्त लगता है, उन्हें उनकी छोटी छोटी जो जरूरतें हैं, पानी की जरूरत हो, सब्जियां लानी हो, या इस तरह की भी चीजें हैं जो वो दूसरी फलस्तीनी बस्तियों से लाना चाहते हैं, तो उन्हें काफी लंबा चक्कर लगा करके चीजों को लाना पड़ता है क्योंकि वो यहूदी बस्तियों से होकर के नहीं जा पाते।
ये जो बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है, इसका जो चुनाव आने वाले हैं उससे क्या संबंध है, उससे भी क्या कोई संबंध हो सकता है?
जी बिल्कुल, उसी से इसका बिल्कुल गहरा संबंध है। यहाँ पर कुछ विश्लेषकों ने तो ये भी कहा है कि ये जो ऐलान है ये चुनावी हिस्टीरिया है, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू काफी घबराए हुए हैं
जी।
तो अभी उनकी कोशिश ये है कि उन्हें वो ये बता सके कि अगर हमारा समर्थन करोगे, हम प्रधानमंत्री रहे तो हम इन इलाकों को अपने कब्जे में ले लेंगे, इसलिए तुम्हारे हित में है कि हमें वोट दो।
यरूशलम से हरिंदर मिश्रा, उनसे बात कर रहे थे राजेश जोशी। ब्रितानी शासन ने छात्रों को दिए जाने वाले स्टूडेंट वीजा में तब्दीली की है, तो एक तरह से छात्रों के लिए खुशी है जो विदेश से जाकर ब्रिटेन में पढ़ते हैं। उनकी पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद उन्हें 2 साल का और वीजा मिल पाएगा। गगन सबरवाल बीबीसी संवाददाता हैं, उनसे मैंने बात की थोड़ी देर पहले और उनसे पूछा कि ये नई नीति क्या है।
आज सुबह बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट ने एक नया अनाउंसमेंट किया स्टूडेंट वीजा को लेके उन्होंने बोला है कि जो 2011 में जब तेरेसा मे होम सेक्रेटरी थी तब उन्होंने एक पोस्ट स्टडी वीजा को उन्होंने डिसकंटिन्यू किया था, तो बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट वो वापस लेके आ रही है। इसका ये मतलब है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट इंडिया पाकिस्तान अब्रॉड से जो यहाँ पे आते हैं पढ़ाई करने के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस के लिए मास्टर्स के कोर्सेस के लिए, कोर्स के बाद वो एक्चुअली वापस रह पाएंगे 2 साल के लिए और इस 2 साल में उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा जॉब तलाश करने के लिए। 2011 में तेरेसा मे ने ये अबॉलिश कर दिया था ये स्कीम, तो उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आते थे कोर्स के बाद उनको सिर्फ 4 महीने का मौका दिया गया था जॉब ढूंढने के लिए, और जैसे कि आपको और मुझे पता है 4 महीने बहुत कम टाइम पीरियड होता है जॉब ढूंढने के लिए, और कंपनीज भी हेजिटेट कर रही थी उनको जॉब देने के लिए क्योंकि उनका वीजा सिर्फ 4 महीने का वीजा था। इसके अलावा पीएचडी स्टूडेंट्स को 1 साल का यू नो एक्सटेंशन मिला था 2011 में, लेकिन वो भी पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए कम पड़ रहा था।
कोई अंदाजा है कि खासतौर पर दक्षिण एशिया से और खासतौर पर भारत से कितने छात्र जाते होंगे और कितने लोगों को इसका फायदा होगा?
तो अगर मान लीजिए 100 फुल टाइम स्टूडेंट्स यूके में है, उसमें से 50 स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, तो दिस इज अ मैसिव नंबर। ना 2011 में जब तेरेसा मे ने ये अबॉलिश किया था तो उस साल यूके ने 55% ड्रॉप देखा इंडियन स्टूडेंट्स के फिगर्स में। तो अभी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ओनर्स भी बहुत खुश है क्योंकि वो हमेशा से उन्होंने ये बोला है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इंटरनेशनल टैलेंट की ज़रूरत यूके को है, और अभी ब्रेग्जिट जो होने वाला है उसके बाद और ज़्यादा इस देश को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंटरनेशनल टैलेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए ये बहुत ही गुड न्यूज़ है।
विदेश से ब्रिटेन में जाकर पढ़ने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
और अब रुख भारत की तरफ। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि आज सुपूर में हुई एक मुठभेड़ में एक चरमपंथी की मौत हो गई है। मैंने थोड़ी देर पहले बात की श्रीनगर में मौजूद हमारे साथी माजिद जहांगीर से और इस बाबत पूछा।
ये सुबह के आज 9 बजे की घटना है उत्तरी कश्मीर के सोपोर में, जो श्रीनगर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा है, और वहाँ पे जब एक गाड़ी आ रही थी जिसमें एक चरमपंथी जिसकी पहचान आसिफ भट्ट के तौर पर हुई है तो गुजर रहा था, उनको जो पुलिस का कहना है कि उनको रुकने के लिए कहा गया और उन्होंने हैंड ग्रेनेड फेंका, और जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक मुठभेड़ शुरू हुई और जिसमें वो मारा गया, और जिसके हवाले से फिर जो है डीजीपी दिलबाग सिंह ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया और उसमें उन्होंने पूरा जो है डिटेल्स बताई।
दिस मिलिटेंट ऑफ लश्कर-ए तैयबा आसिफ मकबूल भट्ट वाज बीइंग किल्ड टुडे, ही हैड क्रिएटेड लॉट ऑफ टेरर इन दैट एरिया जनरल एरिया ऑफ सोपो।
माजी जहांगीर साहब, ये बताइए कि दिलबाग सिंह ने जो जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रमुख हैं उन्होंने अपनी मीडिया से बात करते हुए ये भी बताया कि कुछ चरमपंथियों को धरा गया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, क्या कार्रवाई की बात की उन्होंने?
पुलिस ने दावा किया कि हमने नॉर्थ कश्मीर में ही जो है सोपोर में कुछ 8 जो है उनको हम मिलिटेंट उनके जो सेल होता है अपर ग्राउंड सेल उससे वो जुड़े हुए हैं और जो पोस्टर लगाने का काम करते थे और उनको जिन पोस्टरों में लोगों को या दुकानदारों को या ट्रांसपोर्टर्स को धमकियां दी जा रही हैं कि वो कारोबार अपना बंद रखें, और इन्हीं 8 लोगों को इन्होंने पकड़ने का दावा किया है, और दिलबाग सिंह ने आज इस कॉन्फ्रेंस में भी इसका दावा किया।
मिलिटेंट्स को भी चेज कर रहे हैं जहां पर उस तरह की धमकी देते हैं, उनकी ओजीडब्ल्यू नेटवर्क में अभी तक हम लोगों ने 8 लोग सोपोर के एरिया किया मैं नॉर्थ कश्मीर में, 5 लोग श्रीनगर टाउन में और 4 लोग शोपियां में जो पोस्टर लगाते थे, जो जगह जगह जाकर के धमकी देते थे लोगों को, उनको पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है और तेज करी जाएगी ये कार्रवाई ताकि लोग जो उनकी सेंस ऑफ फियर जो है वो जाए और काम करें।
दिलबाग सिंह ने ये भी दावा किया कि हालात जो हैं वो बेहतर हैं, स्कूल अब खुल रहे हैं, हालांकि अटेंडेंस अभी भी उतनी नहीं है, दफ्तर खुल गए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि आज तो श्रीनगर के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की स्थिति है, तो क्या हालात है वहाँ, पूरे शहर में घूमते रहे हैं आप?
बेशक जो उन्होंने बात कही है कि आज प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है बिल्कुल नजर आया हमें, जैसे लाल चौक का इलाका था, बट्टामालों का इलाका था, राजबाग का इलाका था, तो इसी तरह जो नेशनल हाईवे है जो श्रीनगर और बारामूला के बीच जोड़ता है श्रीनगर और जम्मू को, तो उस पर भी गाड़ियों की आवाजाही जारी थी। अब ये जाम कहाँ पे हुआ तो मुझे नहीं दिखा, हो सकता है
क्या दूसरे शहरों से लोग आना जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि दफ्तरों में भी जाहिर है उनकी प्रेजेंस तब होगी जबकि दूसरे शहरों से लोगों का आना जाना का सिलसिला श्रीनगर या दूसरे जगहों पे आना का सिलसिला शुरू होगा।
बेशक लोग आते होंगे, यहाँ सिविल सेक्रेटरीट में ऑफिसेज हैं या सेक्रेटरीट में ऑफिसेज हैं, आते होंगे लेकिन बहुत भारी संख्या में नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब है ही नहीं तो लोग किस तरह से आ पाएंगे।
ये थे माजिद जहांगीर, बता रहे थे कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में जो उसको विशेष दर्जा दिया गया था उसको भारत सरकार ने जो ख़त्म कर दिया, वहाँ क्या हालात है। आज वहाँ दिन में जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सारी जानकारी दी थी। अब बात करते हैं दिल्ली के, जहाँ के दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने ये आरोप लगाया है कि कल सुबह 6:30 बजे उनके घर पे छापा पड़ा और पुलिस के पास तलाशी के किसी तरह के कागजात नहीं थे, बावजूद उसके उनके परिवार के लोगों तक के, उनकी बेटी के और उनकी पत्नी के फ़ोन तक जब्त कर लिया गया और उनको किसी से भी बात करने की इजाज़त नहीं दी गई। प्रोफेसर हनी बाबू दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, उन पर राजद्रोह और दूसरे कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। दिलनवाज पाशा की रिपोर्ट।
हैनी बाबू का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें न कोई सर्च वारंट दिखाया न उन पर लगे आरोपों की जानकारी दी।
किताब और मेरा ईमेल, फोन, लैपटॉप, वो सब लूट लेके गया, लेकिन उसमें क्या है मेरा रोल ऐसा कुछ पूछने से वो कुछ मना किया। और मैं भी ये भी पूछा, आपको सर्च वारंट है ये इसमें, क्योंकि मेरा नाम उसमें कहीं नहीं है, तो आपका अथॉरिटी क्या है इसमें, परमिशन कुछ है, वारंट है? तो बोला नहीं, वारंट नहीं है और वारंट बिना वारंट हम ये सब कर सकते।
वहीं बीबीसी को भेजे बयान में पुणे के असिस्टेंट कमिश्नर और इस मामले के जांच अधिकारी शिवराज पवार ने बताया है कि प्रोफेसर बाबू एल्गर परिषद मामले में संदिग्ध हैं और उनके घर पर सबूतों के लिए तलाशी ली गई है और जब्त किए गए सामान की सूची उन्हें सौंपी गई है। अपने बयान में पुलिस ने यह भी कहा है कि पूरी कार्रवाई की वीडियो भी बनाई गई है। हैनी बाबू का आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह एक तरफा थी और पुलिस ने किसी को भी उनके घर में दाखिल नहीं होने दिया।
मैं बोला हमारा नेबर्स कुछ जान फ्रेंड्स है आसपास में, उनको बुलाने का 10 मिनट में वो पहुंच सकते, तो कम से कम उनका विटनेस में आप ये सब कीजिए, तो वो भी मना किया हमारा। वो उनका एक विटनेस पुणे से आया था, पुणे से वो एक पंच लेके आया और किसी लोकल गार्ड को भी बुला के ये सब किया जबरदस्ती से।
उनका ये भी आरोप है कि पुलिस उनके सामान में संदिग्ध चीजें भी डाल सकती है।
मैं टीचर हूँ, टीचर का प्रोटेक्शन क्या है उसमें? पुलिस आके आपका कुछ सब कुछ लेके जा सकते हैं, तो पुलिस उसमें भी बाद में बोल सकते हैं उसमें कुछ लेटर है, तो लेटर कब से है, कौन डाला है उसमें लेटर, वो सब कब मैं प्रूव करेंगे? उसका 3-4 साल लगेगा, मेरा सारा जिंदगी, मेरा फैमिली का जिंदगी, वो सब बर्बाद हो जाएगा।
अधिकार कार्यकर्ता कविता कृष्णन इस कार्यवाही को बुद्धिजीवियों पर हमला मानती हैं।
सरकार को बुद्धिजीवियों के खिलाफ एक भय का माहौल बनाने की कोशिश, बुद्धिजीवियों को डराने की कोशिश, और कुल मिलाकर के पूरे देश में जो हालात हैं, आर्थिक हालात भी और सामाजिक हालात भी, एक तरह से उनसे नजर हटा करके लोगों को ये महसूस कराना कि कुछ और ही मामला है, भीमा कोरेगांव में कोई इस तरह का एकदम ही फर्जी मामला है।
वो ये भी कहती हैं कि इससे यूनिवर्सिटी को भी बदनाम किया जा रहा है,
शिक्षकों के खिलाफ इस तरह से चला करके एक एक करके चुन चुन करके उनके खिलाफ कुछ केस में गिरफ्तार करवाना करना इत्यादि, उससे वो समाज को जरूर मैसेज देना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटियाँ जो है वो अच्छी जगह नहीं होती है।
पुलिस का कहना है कि उनके पास हैनी बाबू के खिलाफ सबूत हैं। आरोप है कि इस दौरान भड़काऊ भाषण भी दिए गए। इसके अगले ही दिन पुणे के नजदीक भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई थी, जिसकी अलग से जांच चल रही है। दिलनवाज पाशा, बीबीसी।
आगे सुनेंगे एक बातचीत अर्थशास्त्र के जानकार विवेक कौल से। आर्थिक मंदी को लेकर उनसे मैंने बात की है थोड़ी देर पहले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बयान पर कि ऑटो सेक्टर में जो मंदी है वो इस कारण है कि लोग ओला और उबर से चलना पसंद कर रहे हैं, और बात होगी पाकिस्तान के गुरुद्वारे वो किस हाल में हैं। साथ ही साथ सुनेंगे दुनिया जहान, जहां आज चर्चा का विषय है रॉबर्ट मुगाबे, जिम्बाब्वे के महान नेता जो वहां की आज़ादी में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन कुछ लोग उन्हें ताना शाह भी मानते हैं। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं विश्व समाचार आदर्श राठौर से।
बीबीसी समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन को पद से हटा दिया है। पिछले 3 सालों में ये तीसरा मौका है जब किसी को इस पद से हटाया गया है। बोल्टन का कहना है कि उन्होंने खुद अपने पद से इस्तीफा दिया है। अमेरिका में आज से ठीक 18 साल पहले हुए 9/11 हमलों की याद में न्यूयॉर्क और पेंटागन में श्रद्धांजलि समारोह मनाया जा रहा है। ये अपनी तरह के पहले हमले थे जिनमें अलकायदा के चरमपंथियों ने यात्री विमानों को हाईजैक करके 4 हमले किए थे। इनमें लगभग 3,000 लोगों की मौत हुई थी। भारत ने कहा है कि वो अगले महीने अरुणाचल प्रदेश के चीन से सटे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सैन्य अभ्यास करेगा। इस अभ्यास में हाल ही में गठित माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स के लगभग 5,000 सैनिक हिस्सा लेंगे। अरुणाचल प्रदेश को चीन दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है और अक्सर इस राज्य में भारतीय नेताओं के दौरे का विरोध करता है। स्कॉटलैंड की एक अदालत ने फैसला सुनाया है कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का ब्रिटेन की संसद को भंग करना और इस मामले में महारानी को सलाह देना गैरकानूनी था। इस बीच ब्रिटेन की विपक्षी पार्टियां फिर से संसद बहाल करने की मांग कर रही हैं, मगर सरकार के सूत्रों का कहना है कि अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आने तक ऐसा नहीं किया जा सकता। अरब देशों ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के उस बयान की निंदा की है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर वो फिर जीतते हैं तो कब्जे वाले वेस्ट बैंक में मौजूद जॉर्डन घाटी पर इसराइली संप्रभुता घोषित कर देंगे। सऊदी अरब ने इसे यूएन चार्टर का खुला उल्लंघन बताया है। अरब लीग और जॉर्डन ने भी इसे आक्रामकता और उकसावे भरा कदम कहा है। ब्रिटानी सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है कि उनके यहाँ पढ़ रहे विदेशी छात्रों को उनका कोर्स खत्म होने के बाद 2 साल तक देश में रहने दिया जाएगा। इससे पहले 2012 में व्यवस्था की गई थी कि अगर छात्रों को कोर्स पूरा होने के 4 महीने के अंदर देश छोड़ना पड़ेगा। यह कदम ब्रिटेन में आप्रवासन को कम करने के लिए उठाया गया था। नॉर्वे की शरणार्थी परिषद का कहना है कि सोमालिया में जारी संघर्ष और सूखे के कारण लगभग 2.5 लाख लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। इनमें से अधिकतर लोग सूखे के कारण भोजन और पानी की तलाश में शहरों की ओर निकले हैं। एजेंसी का कहना है कि 1,30,000 से अधिक लोगों को इस साल उनके कैंपों से हटा दिया गया और उनमें से अधिकतर लोग कई सालों से यहां पर रह रहे थे। फिलीपींस के विदेश मंत्री ने कहा है कि उनके देश में ड्रग्स के खिलाफ छेड़े गए अभियान में कथित हिंसा को लेकर संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं को जांच की इजाज़त नहीं दी जाएगी। टियोडोको लॉक्सिन ने जांचकर्ताओं के लिए कठोर शब्द इस्तेमाल करते हुए कहा कि वो पहले ही नतीजे पर पहुंच गए हैं। जुलाई में संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि वो ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ 3 सालों से चलाए जा रहे अभियान पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा। इस अभियान में पुलिस के हाथों कम से कम 6,700 लोगों की जान गई है। हजारों अन्य की मौत स्वयंभू निगरानी समूहों के साथ मुठभेड़ों में हुई है। एक नए सर्वे के मुताबिक 3/4 अमरीकी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने कहा है कि अमरीका और चीन के बीच छिड़े ट्रेड वॉर से उन्हें नुकसान पहुंच रहा है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी रेडियो की शाम की सभा दिन भर, फैसल मोहम्मद अली से। आगे सुनेंगे दुनिया जहान, जिसमें चर्चा होगी जिम्बाब्वे की, लेकिन उससे पहले बात अर्थ जगत से। कल हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया है कि ऑटो सेक्टर में जो सुस्ती दिख रही है वो ओला और उबर टैक्सी सेवा की वजह से है। उनका कहना था कि साल 2000 जिसे के बाद पैदा हुए जो लोग हैं, यानी जिन्हें मिलेनियल के नाम से भी जाना जाता है, वो युवक जो हैं कार के बजाय टैक्सी की सेवा पसंद कर रहे हैं और यही वजह है कि कार की कम बिक्री हो रही है। मैंने थोड़ी देर पहले बात की अर्थशास्त्र के जानकार विवेक कौल से, जो मुंबई में मौजूद हैं, और उनसे जानना चाहा कि वित्त मंत्री के बयान को किस रूप में देखा जाना चाहिए।
मुझे लगता है कि यहाँ पे जो इशू है वो कारों का बिकना या ना बिकना नहीं है। इशू ये है कि भारत में आर्थिक सुस्ती आ गई है। पूरे इशू को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये केवल कारों के ना बिकने के बारे में नहीं है। आप ये देखिए, दो पहिए वाहन भी नहीं बिक रहे हैं, स्कूटर नहीं बिक रहे हैं, मोटरसाइकिल नहीं बिक रहे हैं, यहाँ तक कि मोपेड भी नहीं बिक रहे हैं जितने पहले बिकते थे। तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या मतलब, लोग मोपेड भी इसलिए नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि वो ओवरओला से चल रहे हैं? ये तो बड़ी बेतुकी बात हो जाएगी ऐसा अगर कोई कहे। इसको मैं थोड़ा और आगे लूंगा। आप देखिए, ट्रैक्टर भी नहीं बिक रहे हैं। अब ट्रैक्टर का ऊबर ओला से क्या लेना देना है? इससे आगे देखिए आप, कमर्शियल व्हीकल्स भी नहीं बिक रहे हैं। इससे आगे आप देखिए तो जो जिसको हम ग्रोथ कहते हैं, जो बिस्किट की बिक्री की जो विकास की दर थी वो भी गिर गई है। तो आप ऐसा अगर आप अक्रॉस दी इकोनॉमिक स्पेक्ट्रम देखेंगे तो आपको यही नजर आएगा कि लोग जो हैं पहले के हिसाब से कम पैसा खर्च कर रहे हैं। ये जो उबर ओला की हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, तो आप देखिए उबर ओला ऐसा नहीं है कि परसों ही आया है ना, पिछले चार साढ़े चार से साल, पांच साल, छह साल से उबर ओला इस देश में है। तो पांच साल तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन पिछले छह महीने में पूरे जो हिंदुस्तान को ये एहसास हुआ कि हमको गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए और हमको उबर ओला में चलना चाहिए।
लोग आखिर खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं? और शायद ये हंसी की बात लगेगी कुछ लोगों को, लेकिन यहाँ तक कहा जा रहा है कि लोग अंडरवियर या चड्डी भी नहीं खरीद रहे।
नहीं मतलब अंडरवियर चड्डी लोग खरीद रहे हैं और पहले के हिसाब से नहीं खरीद रहे। मतलब जैसे पहले अगर मान लीजिए अंडरवियर की सेल्स में मान लीजिए हर साल 10% का इजाफा होता था, अब उतना नहीं हो रहा, 5% 4% इस किस्म से इजाफा हो रहा है। तो ये कटौती इसलिए हो रही है। मतलब इकोनॉमिक हिस्ट्री देखिएगा, जब भी कोई कहीं किसी भी इकोनॉमी में सुस्ती होती है या मंदी आती है या महामंदी भी आती है, तब ये इसलिए होता है क्योंकि लोगों को अपने आर्थिक भविष्य पर विश्वास नहीं होता है। उनको ये लगता है कि आने वाला समय जो है उनके लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्थिक हिसाब से मुश्किल होने वाला है, और इसलिए वो ये कोशिश करते हैं कि जितने पैसे उनके पास अभी इस वक्त हैं उसको बचा के रखें, क्योंकि अगर भविष्य में कोई मुसीबत हुई, नौकरी गई, इस किस्म की कुछ चीज हुई, तो कम से कम कुछ पैसा हो जिससे कि जिंदगी थोड़ी आराम से बसर की जा सके। अगर आप मतलब इनकम्स को देखिए पिछले चार पांच साल से, वो इस हिसाब से नहीं बढ़ रही है जैसे कि पहले बढ़ रही थी। तो लोगों ने जो पिछले चार पांच साल से लोन्स लेके जो है अपना खर्चा जारी रखा है, और अब वो भी नहीं हो रहा है।
अर्थशास्त्र के जानकार विवेक कौल, और अब देखते हैं कि सोशल मीडिया पर किन मुद्दों पे बात हो रही है।
मंगलवार शाम से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। निर्मला सीतारमण ने कहा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर BS6 और मिलेनियल की सोच का असर पड़ रहा है, जो अब गाड़ी खरीदने की बजाय ओला या उबर को तरजीह दे रहे हैं। इस वजह से ट्विटर पर बायकॉट मिलेनियल ट्रेंड कर रहा है। लेखक और कॉमेडियन वरुण ग्रोवर ने तंज किया, ट्रकों की बिक्री घटी क्योंकि ट्रक ड्राइवर ओला उबर ड्राइवर बनने के लिए ट्रक चलाना छोड़ रहे हैं। ट्रैक्टर की बिक्री इसलिए घट रही है क्योंकि किसान ओला उबर की राइड एंजॉय करने के लिए शहर आ रहे हैं।
आप कैसे आ रही हैं दफ्तर?
मैं तो सर ऑटो से आ रही हूँ फिलहाल,
ओला और उबर से नहीं।
ओला और उबर
से, ओला और उबर ने तो शायद अब ऑटो की सर्विस भी, सेवा भी शुरू कर,
पर उनकी सर्विस इतनी कम है कि हम उसका इस्तेमाल करें ना करें
ऑटो की जी। सर्विस जो जी।
इसके अलावा अमृतसर के जलियांवाला बाग की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई हुई है। एक ब्रितानी आर्च बिशप जस्टिन वेल्बी इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। जस्टिन वेल्बी अमृतसर में जलियांवाला बाग स्मारक पर जाकर लेट गए हैं
और उन्होंने माफी भी मांगी है, जो जलियांवाला बाग पूरा कांड हुआ था उसके लिए एक तरह से।
और उन्होंने जलियांवाला बाग नरसर हार के लिए माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि वो इससे बेहद दुखी और शर्मिंदा है। गुलाबी कपड़ों में दंडवत लेटे इन बिशप की तस्वीर को लोग जमकर शेयर कर रहे हैं।
नहीं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चलिए जो राजनीतिज्ञ नहीं कर पाए वो कम से कम किसी आर्क बिशप ने ही एटलीस्ट आकर कर दिया और माफी मांग ली।
बिल्कुल। आज 11 सितंबर है, आज ही के दिन अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था। लोग इस हमले को याद करते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। आईफोन 11 आ गया है। यह आईफोन 3 कैमरों के साथ है। हर साल जब जब ये लॉन्च होता है, इसकी कीमत और फीचर की वजह से ये छाया रहता है। इस फोन में पीछे की तरफ तीन कैमरे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग मजाक में नारियल की तस्वीर लगा रहे हैं, जिसमें नारियल में बने निशान कैमरे की तरह लग
मतलब
रहे हैं।
तीन लग रहे हैं
जी हाँ।
अब ये देखना कि कितने लोग खरीदते हैं, क्योंकि सुस्ती का दौर कहा जा रहा है।
वाकई सलमान खान ने बुधवार को अपनी नई फिल्म दबंग 3 का टीजर जारी किया है। ये फिल्म 20 दिसंबर को रिलीज होगी, लेकिन ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में अभी से ये फिल्म बनी हुई है।
ये बता रही थी बुशरा शेख।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
और अब चलते हैं पाकिस्तान। इन दिनों करतारपुर का नाम बार बार चर्चा में आ रहा है। करतारपुर साहब, जहां सिख मजहब की नींव रखने वाले बाबा गुरु नानक देव ने आखिरी सांस ली थी। करतारपुर के अलावा गुरु नानक का जन्म स्थान और सिख मजहब से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे धरोहर पाकिस्तानी पंजाब में मौजूद हैं। बंटवारे की वजह से सिखों को भारत का रुख करना पड़ा और इन धरोहरों की देखभाल करने वाला लगभग कोई नहीं बचा। अब जो उन इलाकों में जो मुसलमान बचे हुए हैं, कई जगहों पर उनकी देखभाल कर रहे हैं। हाल के दिनों में इन सिख जो धरोहर हैं, उनके जीर्णोद्धार का काम भी शुरू हुआ है। बीबीसी संवाददाता शुमैला जाफरी एक ऐसी ही गुरुद्वारे पहुंची, नौशेरा विकरान में, जिसे सिखों के छठवें गुरु हरगोविंद सिंह की याद में बनवाया गया था।
मिले ही राजा जफे खतफे बाह उलार दोवे।
पंजाब के इलाके जंडियाला शेर खान में हीर रांझा के लेखक सूफी शायर वारिस शाह के मजार पर एक भक्त हीर गा रहा है। सुर्ख ईंटों से बने मकबरे के इर्द गिर्द बहुत बड़ा बाग है। हर मजार की तरह यहाँ छोटी छोटी दुकानें हैं, जहाँ तस्बियां, सुर्ख रंग के धागे, चराग और वारिस शाह की किताबें बिक रही हैं। कुछ औरतें और मर्द बरामदों में बैठे हैं, जिनके आसपास बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ हर वक्त ऐसे ही भीड़ रहती है। वारिस शाह को मानने वाले अपने दिलों की मुरादें लिए यहाँ आते हैं, चराग जलाते हैं और दरबार पे सलाम करके अपनी राह लेते हैं। वारिस शाह के मजार से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर एक और बड़ा सा सफेद गुंबद दूर से चमकता दिखाई देता है। चावलों के सरसब्ज खेतों में घिरा ये गुरुद्वारा खारा साहिब है। मट्टू भाई के गांव में ये गुरुद्वारा 1940 में सिख मजहब के छठे गुरु की याद में बनाया गया। कहा जाता है कि गुरु जी यहाँ कुछ दिन रुके थे और उन्होंने अपने भक्तों को तंबाकू से दूर रहने का हुक्म भी यही दिया और उन्हीं की दुआ से इस इलाके का खारा पानी मीठा हुआ।
सन 1950
में तकरीबन 3000 सिख भारत से फिर दोबारा यहाँ पाकिस्तान आए, अपनी जगह और गुरुद्वारे को देखने के लिए। उसके बाद कभी 2 साल में, कभी 4 साल में सिख आते रहे और फिर उन्होंने आना छोड़ दिया।
केयर शुरू की थी, ये मरम्मत शुरू कराई
और अब दोबारा इसकी मरम्मत करवाई जा रही है।
नसरुल्ला मट्टू की उम्र 70 साल है। वो बंटवारे के कुछ ही अरसे बाद पैदा हुए। उन्होंने इस गुरुद्वारे को हमेशा ही खाली देखा है। उनका बचपन गांव के बच्चों के साथ इस इमारत के अंदर और आसपास खेलते गुजरा।
असि इनु बड़ा खूबसूरत वेंदे रहे और इथों कम अज कम होते कुछ भी नहीं जी।
हमने इसे बहुत खूबसूरत देखा है और यह अब तो कुछ भी नहीं। पहले यह 20-20 किलोमीटर दूर से दिखता था।
गुरुद्वारे जान के इबादत करते ने या अपनी,
अगर वो यहाँ गुरुद्वारे में आकर इबादत करना चाहते हैं या यहाँ आकर अपने घर में रहना चाहते हैं, तो हम उनकी पूरी तरह से जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं।
बंटवारे से पहले मट्टू भाई के गांव की ज्यादा आबादी सिख थी। जब तकसीम हुई तो सिख खानदान भारत हिजरत कर गए और गुरुद्वारा बंद हो गया, लेकिन यहाँ के मुसलमान इस इमारत की हिफाजत करते रहे।
हम रखते हैं ख्याल इसका, लोगों को भी हम गए बगाए उनको बताते रहते हैं कि ये सिखों की जो है इबादत गाह है, इसका ख्याल रखें, क्योंकि जैसे हम अपनी मस्जिदों का ख्याल रखते हैं उसका भी रखना चाहिए।
आसिफ मट्टू इस गांव की यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हैं। वो इस गुरुद्वारे में मुरम्मत के काम की निगरानी कर रहे हैं ताकि इसे सिख यात्रियों के लिए खोला जा सके।
रास्ता तंग था उनको मेन जाने का, वो 3-4 फुट की गली थी, हमने वो 8 फुट के करीब तकरीबन उनको करवा दी है। मिस्त्री अभी भी लगे हुए हैं, उसकी चार दीवारी, उसकी जो दरवाजे वगैरह थे कुछ टूटे हुए थे वो बेहतर करवा दिए। जो सिख यात्री उधर से आते हैं उनका साथ तामर भी करते हैं जिस चीज की उनको जरूरत हो।
तकरीबन 70 साल खाली रहने की वजह से गुरुद्वारे के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि इसे जल्द ही इसकी असल शक्ल में वापस लाया जाएगा। शुमैल जाफरी, बीबीसी न्यूज, पंजाब, पाकिस्तान।
जिम्बाब्वे के पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार के लिए, माफ कीजिएगा, सिंगापुर से हरारे लाया जा रहा है। मुगाबे का बीते शुक्रवार को सिंगापुर में निधन हो गया था। दुनिया जहान में संदीप सोनी नजर दौड़ा रहे हैं रॉबर्ट मुगाबे के सफर और उनकी विरासत पर।
दुनिया जहान।
आई रॉबर्ट गैब्रियल मुगाबे डू स्वेयर दैट आई विल बी फेथफुल एंड बेयर ट्रू अलीजेंस टू जिम्बाब्वे एंड ऑब्जर्व द लॉज ऑफ जिम्बाब्वे। So help me God.
रॉबर्ट गैब्रियल मुगाबे। कुछ लोगों को उनमें शैतान और तानाशाह नजर आया क्योंकि उन्हें मुगाबे की वजह से अपनी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ी।
He didn't want to give other people a chance. That's my biggest thing. Now we have a huge problem.
वो दूसरों को मौका नहीं देना चाहते थे, यही सबसे बड़ी बात है। उन्होंने अपने लोगों को काबू में नहीं रखा, इसलिए हम इतनी समस्याओं से जूझ रहे हैं।
वहीं कुछ लोगों के लिए मुगाबे एक क्रांतिकारी हीरो थे जिन्होंने नस्ली दमन और पश्चिमी साम्राज्यवाद के खिलाफ अपना झंडा हमेशा बुलंद रखा।
He led Zimbabwe in a right way.
उन्होंने जिम्बाब्वे को सही दिशा दिखाई। हम चाहते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले।
So to me, he deserves a great honor as well.
वो मेरे पहले राष्ट्रपति थे, इसीलिए मुझे लगता है कि वो सम्मान के हकदार हैं।
मौजूदा जिम्बाब्वे अफ्रीकी महाद्वीप में जमीन का वो टुकड़ा है जो आजाद होने से पहले रोडेशिया कहलाता था। ब्रिटेन की कॉलोनी होने की वजह से गोरे यहाँ संख्या में कम होने के बावजूद शासक थे, जबकि काले बहुसंख्यक होते हुए भी गुलामी का दंश झेल रहे थे। मुगाबे ने जब इसका विरोध किया तो गोरों ने बिना किसी सुनवाई के उन्हें जेल में डाल दिया। एक दशक से ज्यादा समय जेल में बिताने के बाद जब मुगाबे की रिहाई हुई, उन्होंने मोजाम्बिक जाकर छापामारों की मदद से रोडेशिया को आजाद कराने की कोशिश की और चतुर वार्ताकार की तरह राजनीतिक समझौतों के जरिए एक नए और आजाद जिम्बाब्वे गणराज्य का मार्ग प्रशस्त किया। इस जंग आजादी में मुगाबे की अहम भूमिका का नतीजा ये हुआ कि साल 1980 में हुए पहले चुनाव में जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाकर सत्ता की चाबी उनके हवाले कर दी।
गुड इवनिंग फ्रॉम सॉल्सबरी। मिस्टर मुगाबेस लैंडस्लाइड विक्ट्री हियर विद अ टोटल ऑफ 57 ऑफ द 100 सीट्स।
सत्ता की यही चाबी लगभग चार दशक तक मुगाबे की मुट्ठी में कैद रही।
Let's get more now on the situation in Zimbabwe. Its generals say they are not staging a coup, but they've taken over the state broadcaster ZBC and insisted that they're not attempting to overthrow the government, but instead targeting criminals around President Robert Mugabe.
बेहद नाटकीय घटनाक्रम के बीच जिम्बाब्वे ने एक नई सुबह साल 2017 में तब देखी जब सेना ने सत्ता पर नियंत्रण करके मुगाबे को इस्तीफे के लिए मजबूर कर दिया और इमरसन मननगागवा देश के नए राष्ट्रपति बने। लेकिन एक नायक कब और कैसे खलनायक सा बन गया। भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह को रॉबर्ट मुगाबे से मिलने का मौका मिला था। वर्षों पहले की उस मुलाकात को याद करते हुए नटवर सिंह कहते हैं,
When I went to meet him in 1980, before he became the Prime Minister, Salisbury में पहले पता नहीं लगा वो ठहरे कहाँ है, तो बड़ी मुश्किल से वहाँ एक हिंदुस्तानी से वो इंडियन कम्युनिटी के उनसे पूछा भाई कहाँ है, तो मैं बताऊंगा आपको दो तीन दिन में। तो उसने बताया कि वो इस वक्त अंडरग्राउंड है, मगर आपको मैं ले जाऊंगा। तो उसने वो अपनी गाड़ी में ले गया मुझे, जो सफेद वहां थे पुलिस वाले उनसे बचकर अलग रास्ता लेके पहुंच गए। तो वहां से कहे ये है मुगाबे साहब जहाँ ठहरे हुए हैं। तो हम फिर अंदर गए, तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं आपके पास इंदिरा गांधी का पैगाम लाया हूँ, आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और वो एक छोटे कमरे में बैठे हुए थे कंबल लगा के। पहले जो राज किया उन्होंने 20 बरस वो तो ठीक रहा, 17 साल उन्होंने तबाह कर दिया जिम्बाब्वे को। सारी इकोनॉमी खत्म, कोई चीज नहीं मिल रही, इन्फ्लेशन 11% ہو گئی ان کی وجہ سے اینڈ ہی بیکیم اے ٹرو ڈکٹیٹر.
سال 1980 میں آزادی کے بعد رابرٹ مگابے کے ایک بھاشن کو زمبابوے میں لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں.
I urge you, whether you are black or white, to join me in a new pledge to forget our grim past. Forgive others and forget.
آپ گورے ہیں یا کالے, میں آپ کو آمنترت کرتا ہوں اپنے اتیت کو بھولتے ہوئے, معاف کرتے ہوئے آئیے ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں اور ایک نیا دیش بنائیں.
رابرٹ مگابے کے ساتھ اسکول میں پڑھے لارنس وومبے اس بھاشن کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں,
wonderful words, you know, really wonderful words. My chest would almost burst with pride.
مگابے کے یہ شبد کمال کے تھے, یہ شبد میرا سینہ چوڑا کر دیتے ہیں. سنگھرش کے بعد جو گورے لوٹ کر جا رہے تھے ان میں سے کئیوں نے محسوس کیا کہ یہ آدمی برا نہیں ہے اور وہ یہیں بس گئے.
My government will never rest until those within that party who are responsible for organizing the dissidents are crushed.
رابرٹ مگابے کا ایک الگ چہرہ سال 1983 میں نظر آیا جب انہوں نے اپنے راجنیتک پرتیدوندیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنی سینا کی ایک چنندہ بریگیڈ کا استعمال کیا. ایک انومان کے مطابق اس میں لگ بھگ 20,000 لوگوں کو بے رحمی سے مارا گیا. زمبابوے میں راجنیتک وشلیشک جان مکمبے بتاتے ہیں,
whenever he was challenged, you know, the colors came out in full. For example, when anyone threatened
رابرٹ مگابے کو جب بھی کسی نے چنوتی دی ان کا الگ رنگ نظر آیا. مثلا یدی کسی نے کیبینٹ سے استعفے کی دھمکی دی تو مگابے نے استعفے کو نامنظور کر کے اسے سیدھے برخاست کر دیا.
راشٹرپتی مگابے کے ساتھ سوچنا منتری کے طور پر کام کر چکے جوناتھن مویو ایک اور ادھارن دیتے ہوئے کہتے ہیں,
ahead of crucial meetings everyone would be there except him. He usually would be the last to come in.
جب بھی کوئی اہم بیٹھک ہوتی راشٹرپتی مگابے سب سے آخر میں پہنچتے. مگابے کے آنے سے پہلے ماحول بڑا ہلکا پھلکا رہتا, سب آپس میں وچار ومرش کرتے, لیکن جیسے ہی مگابے کا آگمن ہوتا سب چپ ہو جاتے اور مگابے کی ہاں میں ہاں ملاتے.
دکشن افریقہ میں رنگ بھید کے خلاف لمبا سنگھرش کرنے والے نیلسن منڈیلا مگابے کے سمکالین تھے. منڈیلا نے مگابے سے زیادہ سمے جیل میں بتایا. سال 1990 میں منڈیلا کے جیل سے چھوٹنے کے بعد مگابے کو لگا کہ منڈیلا کے آگے ان کا قد چھوٹا پڑ رہا ہے. برٹین کے ودیش منتری رہے سر مالکم رفکین بتاتے ہیں,
مگابے واز اف کورس دی ہیرو اف دی افریقن لیبریشن کاز انٹل نیلسن منڈیلا واز ریلیزڈ اینڈ اف کورس.
اس میں کوئی سندیہ نہیں کہ مگابے افریقہ میں مکتی آندولن کے ایک ہیرو تھے, لیکن تبھی تک جب تک کہ نیلسن منڈیلا جیل سے رہا نہیں ہوئے تھے. مگابے نے منڈیلا کی رہائی کا سواگت تو کیا لیکن وہ افریقہ میں اچانک نمبر 2 کی پوزیشن پر پہنچ گئے تھے.
یہی وجہ ہے کہ منڈیلا اور مگابے کے راستے الگ ہو گئے. بھارت کے پورو ودیش منتری نٹور سنگھ,
ان کے رشتے نیلسن منڈیلا سے ٹھیک نہیں تھے کیونکہ منڈیلا نے کہا ان سے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. تو جتنے اس کے پرانے جو کالیگس تھے نزدیک والے وہ سب دور ہو گئے ان سے. جب بھی اسی وجہ سے جو ویسٹرن پریس ہے انہوں نے بہت برائی کی ہے مگابے صاحب کی.
رابرٹ مگابے اکثر چاٹوکاروں سے گھرے رہے اور ان کی سرکار کوپربندھن اور بھرشٹاچار میں ڈوبتی رہی. مگابے کی پہلی پتنی سیلی ان چند لوگوں میں شمار تھیں, مگابے جن کی تھوڑی بہت سنتے تھے. لیکن سیلی کے ندھن کے بعد لوگوں کو لگا کہ مگابے کو روکنے والا اب کوئی نہیں رہا. ورش 1996 میں لوگوں کو تب حیرانی ہوئی جب مگابے نے اپنی سیکرٹری گریس سے دوسرا وواہ کیا. بے حد خرچیلا وواہ سماروہ آیوجت کیا گیا جس میں ہزاروں اتیتھیوں کو بلایا گیا. گریس مگابے سے 40 سال چھوٹی تھیں اور ان کے شوق اتنے مہنگے تھے کہ لوگ انہیں امیزنگ گریس کے نام سے بلانے لگے. مگابے نے دیش کی جنگ آزادی میں شامل ہوئے ورشٹھ ناگرکوں کو لاکھوں ڈالر بھگتان کرنے کا اپرتیاشت فیصلہ کر کے زمبابوے کے بجٹ کو پٹری سے اتار دیا. کانگو گن راج سے کھیتری یدھ کی وجہ سے ارتھ ویوستھا نے بھی گوتا لگانا شروع کیا. لیکن جب بھی پکش نے راشٹرپتی کی شکتیوں کو کم کرنے کے لیے سمویدھان میں بدلاؤ کی مانگ کی, راشٹرپتی مگابے نے ہنسا کے ذریعے اس کا آدھیکارک جواب دیا. لیکن جب ویروت پردرشن بڑھتا گیا راشٹرپتی مگابے نے دمن کی جگہ سمویدھان پر جنمت سنگرہ کا راستہ چنا जिसे खारिज करके लोगों ने राष्ट्रपति मुगाबे को चुनाव में हराकर पहला बड़ा झटका दिया। देश में लोकतांत्रिक और संवैधानिक सुधारों की मांग जोर पकड़ती जा रही थी। हिंसा के हथकंडे कारगर साबित नहीं हो रहे थे। मुगाबे ने इसका भी तोड़ निकाला और जमीन को नए सिरे से लोगों में बांटने का फैसला किया।
There is a struggle demanding that we be united in it. Those who own the land will not...
लेकिन ये फैसला बंदरबांट साबित हुआ, जिससे हालात और खराब हो गए। अर्थव्यवस्था की हालत नाजुक होने लगी और विदेशी निवेशकों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। दम तोड़ती अर्थव्यवस्था की वजह से लाखों लोग जिम्बाब्वे छोड़कर चले गए। मुगाबे ने इसका ठीकरा ब्रिटेन के सिर फोड़ा।
We can't learn rule of law from the British because they never introduced it here. We introduced it. That's what I'm telling you. They cannot be our teachers of democracy because.
लेकिन हैरानी की बात ये रही कि ब्रिटेन को कोसने के बावजूद मुगाबे अपनी पत्नी ग्रेस के साथ शॉपिंग करने के लिए लंदन आते जाते रहे। इस बीच रॉबर्ट मुगाबे को लेकर अमेरिका और यूरोपीय परिषद की पाबंदियों की वजह से जिम्बाब्वे अलग थलग पड़ता जा रहा था। चुनाव में धांधली की शिकायतों की वजह से उसे अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। फिर साल 2008 में उम्मीद की दुर्लभ किरण नजर आई, जब रॉबर्ट मुगाबे ने अपने विरोधियों के साथ मिलकर सरकार बनाई। नतीजा ये हुआ कि हालात कुछ समय के लिए बेहतर हुए, लेकिन अगले ही चुनाव में मुगाबे और उनकी पार्टी की जीत हुई, जिसे विपक्ष ने धांधली बताकर खारिज कर दिया। लेकिन मुगाबे फिर भी सत्ता में टिके रहे और उनके तौर तरीकों की वजह से अर्थव्यवस्था लगातार गोते लगाती रही और आम लोगों की जिंदगी दूभर होती रही।
Join hands in a new amity and together Zimbabweans trample upon racism.
साल 1980 में जिन सपनों को दिखाकर मुगाबे पहली बार सत्ता में आए थे, वो सपने सामाजिक और आर्थिक पैमानों पर चार दशक के बाद भी पूरे नहीं हुए। नतीजा ये हुआ कि साल 2017 में सेना ने मुगाबे को सत्ता से बेदखल कर दिया और इमरसन मननगागवा को राष्ट्रपति बनाया, जो कभी मुगाबे के ही खास आदमी हुआ करते थे। लेकिन नई सरकार के बावजूद जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था आज भी डांवाडोल है और गरीबी अपनी जगह। जिम्बाब्वे के लिए फिलहाल यही मुगाबे की विरासत है। संदीप सोनी, BBC, दिल्ली।
कई लोगों ने कहा है कि मुगाबे को अलग अलग शक्ल में याद किया जाएगा। कुछ लोग उन्हें स्वतंत्रता सेनानी मानेंगे, कुछ कहेंगे वो एक तानाशाह थे। और अब सुनते हैं खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं ज्योतिका सिंह। सबसे पहले बात फुटबॉल की। भारतीय फुटबॉल टीम ने मंगलवार यानी कल जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए अपने से 41 रैंक ऊंची कतर की टीम को ड्रॉ पर रोक दिया। ये फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफायर का मुकाबला था। अगला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में कतर में ही होना है। भारतीय टीम मंगलवार को कतर के खिलाफ कप्तान सुनील छेत्री के बिना मैदान पर उतरी थी। कप्तान सुनील छेत्री के बिना, बता रहे हैं फुटबॉल एक्सपर्ट गौस मोहम्मद।
आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, अगर आपका CEO, आपका चीफ अगर वो नहीं आया है, तो हो सकता है बाकी के लोग ज्यादा जिम्मेदारी से काम करते हैं। तो अगर वहाँ पे हमारा एक फिनिशर था सुनील छेत्री, जो बड़े दिमाग से खेलता नहीं था, तो बाकी के 11 खिलाड़ी आप देखिए दौड़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे, एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। उदांता सिंह को आप देखो कितने अच्छा कर रहे थे, थापा को आप देखिए, हमारे संधू को देखिए बोल बोल के खेल रहे थे, हमारा जो डिफेंडर्स थे चारों डिफेंडर्स ने कितनी अच्छा खेल पेश किया। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि किसी एक पे निर्भर जो टीम ना रहे, वो टीम यूनाइट होके भी खेलती है और जो कल टीम खेली है वो यूनाइट होके खेली है।
ये थे फुटबॉल एक्सपर्ट गौस मोहम्मद। वहीं अब जाने से पहले बात मुक्केबाजी की करते हैं। इंडिया ओपन में रजत पदक जीतने वाले भारत के ब्रजेश यादव ने 81 किलोग्राम भार वर्ग में जारी AIBA मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप में मंगलवार को अच्छी जीत के साथ शुरुआत की। यादव ने धीमी शुरुआत के बावजूद पहले दौर में पोलैंड के मालेयूज को 5-0 से हराया। जुलाई में थाईलैंड में आयोजित थाईलैंड ओपन में ब्रजेश ने रजत पदक जीता था। अब दूसरे दौर में वो तुर्की के बेराम मलकान से भिड़ेंगे। खेल समाचारों में आज इतना ही।
कार्यक्रम के खात्मे से पहले एक बार फिर से सुनते हैं विश्व समाचार।
BBC समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन को पद से हटा दिया है। अमेरिका में आज से ठीक 18 साल पहले हुए 9/11 हमलों की याद में न्यूयॉर्क और पेंटागन में श्रद्धांजलि समारोह मनाया जा रहा है। भारत ने कहा है कि वो अगले महीने अरुणाचल प्रदेश के चीन से सटे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सैन्य अभ्यास करेगा। स्कॉटलैंड की एक अदालत ने फैसला सुनाया है कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का ब्रिटेन की संसद को भंग करना और इस संबंध में महारानी को सलाह देना गैरकानूनी था। अरब देशों ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के उस बयान की निंदा की है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर वो फिर जीतते हैं तो कब्जे वाले वेस्ट बैंक में मौजूद जॉर्डन घाटी पर इसराइली संप्रभुता घोषित कर देंगे। ब्रितानी सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है कि उनके यहाँ पढ़ रहे विदेशी छात्रों को उनका कोर्स खत्म होने के बाद 2 साल तक देश में रहने दिया जाएगा। BBC समाचार।
दिन भर के इस अंक में इतना ही। फैसल मोहम्मद अली और पूरी टीम को दें इजाज़त। इस अंक का संपादन किया था राजेश जोशी ने, तकनीकी पक्ष संभाला था राजेश चौहान ने। अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे, तब तक समाचार और विश्लेषणों के लिए बने रहिए BBCHindi.com पर। नमस्कार।